نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم سورة البقرة آیت نمبر 189 سے 199 تک کریں گے، دیکھتے ہیں آج کے سبق میں. مگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا. پچھلے سبق میں ہم نے بہت امپورٹنٹ آیات پڑھی تھی روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور شاید تھوڑی سی کنفیوژن اس میں ابھی باقی ہے کہ وہ لوگ جو روزہ چھوڑ چکے ہوں کبھی پاسٹ میں، جیسے اپنی پریگننسی میں یا دودھ پلانے کے ایام میں یا پیریڈز کی وجہ سے، تو اب وہ کیا کریں؟ کیا وہ فدیہ دیں یا وہ روزے رکھیں؟ تو روزے بہت زیادہ ہیں، ان کا کیا کریں؟ تو دیکھیں، یہ تو ایک قرض ہے آپ کے ذمہ. جب نہیں پتہ تھا تو نہیں پتہ تھا، اگر اب پتہ چل گیا ہے تو ایسا کریں کہ ان کی ایک کیلکولیشن، ایک رف کیلکولیشن بنا لیں. کوئی اپروکسیمیٹ بھی تو چیز ہوتی ہے نا، تو اپروکسیمیٹ ایک چیز بنا لیں. اگر آپ ان دنوں کو گن کے کسی ڈائری میں لکھ لیں، اور پھر آپ جیسے جیسے اپنے روزے پورے کرتی جائیں، آپ مارک کرتی جائیں، اور کچھ نہ کچھ تو کم ہوتا جائے گا نا. ان دا مین ٹائم آپ فدیہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، فدیہ بھی دے دیں. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر اس سفر میں، اس کو پورا کرنے کے راستے میں موت آ جاتی ہے، تو کم از کم فدیہ تو دیا ہوگا. پھر مہلت ہی نہیں ملی، پھر ٹھیک ہے، پھر تو وارثوں نے بھی روزے رکھنے تھے یا فدیہ ہی دینا تھا نا. لیکن جتنے بھی آپ پورے کر سکیں گے اتنے تو ہو جائیں گے. اس کے لیے اگر آپ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھ لیا کریں، یا میں عید کے روزے رکھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ جو میرے فرض روزے ہیں، اور ان روزوں کو بھی مارک ڈاؤن کرتی جائیں کہ یہ اتنے اتنے میں رکھتی جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں. کسی چیز کو ناممکن سمجھ لینا کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا، ایسے تو نہیں ہے نا. 300-400 روزے بھی ہیں تو کوئی ہو سکتا ہے 10 سال میں، 15 سال میں پورے ہو ہی جائیں. اب لیکن فدیہ آج ضرور دے دیں ان روزوں کا. اب جو لوگ ایسے کسی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو چکے ہیں، کوئی ایسی ان کو بیماری لگ چکی کہ اب وہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور لیکن اب ان کو پتا چلا کہ وہ رکھنے تھے ہم نے، تو ان کے پاس تو ظاہر ہے کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ فدیہ ہی دیں، تو وہ فدیہ ادا کر دیں. تو یہ سمپل کلیئر بات ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کیا ہے ان کے لیے، وہ فدیہ دیں، یا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو اس چیز کو سمجھے کہ بعد میں اس کی قضا پوری کرنی ہے، ٹھیک. اور یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اور دعا کا بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے، اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر اپنی سے مانگنے والے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی سنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھی تو میری سنو نا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے اور کس چیز کو حرام کیا ہے روزے کے دنوں میں. اور پھر ہم نے روزے کے اوقات بھی پڑھے کہ کس وقت ہم نے روزہ بند کرنا ہے اور کب کھولنا ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں جو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا ان کے ریلیشن شپ کو، وہ بھی ہم نے دیکھا. ایک دوسرے کا لباس ہے جو بہت ہی پیاری تشبیہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور باطل جو ہے نا بہت کمپریہنسو ورڈ ہے، اور باطل میں سب وہ طریقے آ جاتے ہیں جو غلط طریقے ہیں، جن میں کسی کو کسی قسم کا بھی ناجائز فائدہ اٹھانا، دھوکا دینا. اور اس میں ایک چیز کو ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ اکثر ہم لوگ اپنا گولڈ جو ہے نا وہ दे के, और दूसरा कोई और डिजाइन, मतलब अब किसी के पास कोई सेट पुराना हो गया, वो अपना गोल्ड लेके गई है और कहती कि इसको दे के ना तो मैं नया सेट ले लेती हूँ कोई और लेटेस्ट डिजाइन का, या इसको सेट को दे के चूड़ियां ले लेती हूँ, या कुछ इस तरह की चीज। ठीक, तो ये इस किस्म की ट्रांजेक्शन जो है करना, ये हराम है, इसमें सूद आता है। आप जब उनको देते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये मसलन 5,000 का बना, और जो ले रहे हैं उसमें उसके लिए आप 1,000 और डालेंगी तो आपको ये नया सेट मिल जाएगा, तो 6,000 का हो जाएगा। एक ही कमोडिटी का इस तरह से ट्रांजेक्शन करना कि चीज दी है और दूसरी चीज ली है, जो एक ही कमोडिटी यानी सोना ही है या खजूर ही है, तो खजूर दी, अपनी अच्छी खजूर दी, दूसरे की रद्दी खजूर ज्यादा करके ले ली, या अपनी रद्दी खजूर थोड़ी दी और दूसरे की ज्यादा करके उम्दा थोड़ी करके उम्दा खजूर ले ली, तो ये ट्रांजेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूदी है। तो इसलिए हमारे जो शेख हैं जिनसे हमने पढ़ा था, तो वो कहने लगे कि मैं एक दफा एक इस सुनार के पास गया और मैंने चीज बेची, ये तरीका मैं सही वाला आपको बता रहा, चीज कहते हैं मैंने बेची, फिर मैंने उसकी कीमत ली, फिर मैं बाहर आया, फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने कोई और चीज खरीदी। तो उसने कहा ये आपने क्या किया? दुकानदार कहने लगा ये आपने क्या किया? अगर आपने कोई और चीज मेरे से खरीदनी थी तो आप उस वक्त ही दे देते और दूसरी चीज ले लेते। तो उन्होंने बताया कि नहीं, फिर ये सूद हो जाता है, यानी आप पहले उसकी कीमत लें, और वो उठ के बाहर क्यों गए? इसलिए कि सौदा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि बाय और मुश्तरी जो है ना, जब तक कि खरीदार और दुकानदार जो है वो जुदा ना हो जाए, तो सौदा तब मुकम्मल होता है। अदरवाइज जब तक वो एक दूसरे के साथ एक मजलिस में बैठे हुए, उस वक्त तक कोई भी इनमें से कह सकता है कि नहीं मैंने नहीं बेचना, या दूसरा कह सकता है मैंने नहीं खरीदना। जब जुदा हो गए तो फाइनल हो गई ट्रांजेक्शन। तो कहते हैं मैं बाहर गया, फिर मैं अंदर आया, फिर मैंने खरीदा। तो ये है इसके अंदर, और ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता, अक्सर खवातीन यही करती हैं, हम गए और ये दे के हम दूसरा ले आए, तो ये नहीं करना। दूसरी एक और चीज जो बहुत कॉमनली यहाँ पे होती है वो है लॉटरी। लॉटरी वगैरह भी हराम है, ठीक है, इसका भी कारोबार भी हराम है, और लॉटरी खेलना ये भी हराम है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग लेते हैं वो टिकट, लेकिन मिलता किसी एक को है, और उसको बगैर किसी अपनी मेहनत किसी चीज के, मतलब उसने $10 का लिया था टिकट और उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल आए, तो किस बात पे, जबकि वो सब का पैसा था। इसी तरह आप कहीं जगह जाते हैं ना जहाँ पे वो खेलने को आपको कहते हैं कि आप इतने पैसे दें और फिर आप कुछ जैसे तीर मारें, अगर आपका तीर इस चीज पे लग गया तो वो चीज आपकी होगी, वो भी हराम है। ठीक है, बाज दफा लगता ही नहीं, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं मिलता। बाज दफा आपने दिए $10 और चीज निकल आई $50 की, वो भी आपका हक नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और मनी एक्सचेंज करना वो ठीक है, वो ट्रांजेक्शन मनी की, क्योंकि आप दूसरी करेंसी ले रहे हैं ना, आप ऐसे नहीं कर रहे रुपी दे के मेरा पुराना रुपी है आप नया रुपी दे दें, लेकिन पुराना रुपी आप 1 रुपया दें और वो आपको 75 सेंट्स दे, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका पुराना था नोट, ये फिर गलत है। लेकिन जब आप मसलन डॉलर से रुपीज लेते हैं तो आप जाहिर है दूसरी कमोडिटी ले रहे हैं ना, दूसरी करेंसी ले रहे हैं, वो सही है। तो बहुत सारी इसके अंदर चीजें आती हैं, लेकिन मुख्तसर हो जाती क्लास करने के लिए, फिर मुझे शॉर्ट करना पड़ता है। आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ना, वो किस मुतालिक है, उसमें क्या कंटेंट है? नंबर 1, उसमें ये कंटेंट है कि ये जो हम सुपरस्टिशियस चीजें बना लेते हैं ना, कि मतलब ये बदशगुनी है, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं, या कुछ ही चीज को एक कोई बस नेकी समझ लेते हैं, बस ये नेकी है और खुद ही बनाई होती है वो, कि कोई कुरान हदीस से नहीं होती, खुद बनाई होती कि ये बस नेकी है, और दूसरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो अल्लाह ताला ने बताई हुई है जो असल नेकी की है। नंबर 2, किताल या जिहाद या लड़ना, इस्लाम में जंग, ये किस वक्त पे होती है, किन किन सिचुएशंस में जायज है, और किन लोगों के साथ कर सकते हैं, और असल क्या माना होता है जिहाद का, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको इतना मिसअंडरस्टैंड किया गया है, और मिस इंटरप्रेट किया गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग शकुक व शुभात का शिकार होते हैं कि इस्लाम का असल स्टांस क्या है, इस पे क्या मौकफ है इस्लाम का जिहाद के बारे में, वो भी हम आज इंशाल्लाह देखें। जिहाद का मतलब किताल मुराद है। चलिए जी देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 189 से। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनक अनिल अहिल्ला, वो सवाल करते हैं आपसे चांदों के बारे में, चांद जो नए चांद होते हैं उनके बारे में, हिलाल जिसको हम भी कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इस नाम से हिलाल दिखाया होता है उस तरह वो करते हैं। तो हिलाल क्या होता है? नया चांद, क्रिसेंट मेरे ख्याल बोलते हैं इसको। तो सहाबा या दूसरे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मुख्तलिफ सवालात किया करते थे। जरूरी नहीं सारे सवालात दीन के लिहाज से ही हों, दुनियावी लिहाज के भी सवाल होते थे। जैसे अब चांद के बारे में, इसका तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं, तो बाहर के लोग भी आके सवाल करते थे। सहाबा तो बहुत ही कम सवाल किया करते थे। तो कोई लोग कोई भी मतलब है कि वो आपसे आके चांद के बारे में पूछते हैं, चांद के बारे में क्या पूछते हैं कि मतलब इसका क्या है इस्लाम के अंदर, या ये जैसे सूरज है, आपने कभी सोचा इस बात को कि सूरज तो घटता बढ़ता नहीं है, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, ये चांद का क्या बात है कि ये क्यों ऐसे है कि भाई छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर फुल मून हो जाता है फिर छोटा होने लगता है फिर गायब हो जाता है फिर नया निकलता है, तो ये क्या बात है, वो ये क्या क्या हुआ इसका, ये क्यों है? तो उसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, आप इनको बता दीजिए क्या इसका जवाब, ही मवाकीतु लिन्नासी वल हज, ये किस लिए है? मवाकीतु लिन्नास, लोगों के लिए वक्त बताने के लिए, वक्त बताना यानी डेट्स तारीख बताने के लिए। इट्स सो इंटरेस्टिंग के जो है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक कैलेंडर हमारे लिए आसमान में लगा दिया। आप अपने घर में कैलेंडर लगाती होंगी, कहाँ लगाती हैं? दीवार पे ना। और क्लॉक कहाँ लगाती है? क्लॉक भी दीवार पे लगा होता है, ये दो चीजें दीवारों पे टंगी होती हैं। अल्लाह ताला ने भी टाइम बताने का क्लॉक भी लगा दिया आसमान में, और कैलेंडर बना बता कैलेंडर भी लगा दिया तारीख बताने के लिए। कैलेंडर क्या है? चांद। और क्लॉक क्या है? सूरज। तो क्लॉक और कैलेंडर ये अपने बच्चों को बताइएगा, उनको बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के कि क्लॉक और कैलेंडर देखो अल्लाह ने भी लगाए हैं। जब जमानों में घड़ियां भी नहीं होती थी, कैलेंडर भी नहीं होते थे, तो कैसे लोग चलते थे? देखिए ये जो इनका शमसी कैलेंडर है, जो इन्हें जैसे जो हम अब यूज भी करते हैं, ये क्रिश्चियन कैलेंडर जो है, ये इससे तो बहुत ही मुश्किल है हिसाब किताब रखना, लेकिन चांद के देख के उसकी जो शेप्स हैं उनसे पता चल जाता है कि क्या तारीख है। अब हम चूंकि इसमें तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे कि जो सुभान अल्लाह नया मून होता है उसका किस तरह से शेप होती है, और उसके बाद जब वो फुल मून होके उसके बाद जो घटने लगता है तो वो दूसरी तरफ से घटता है, फिर उसकी शेप दूसरी होती है। तो आपको पता चलेगा चढ़ती तारीखें कौन सी हैं, और उसके बाद फुल मून का तो पता चल जाता है, चौदहवीं का चांद, फिर उसके बाद घटती तारीखें कौन सी हैं और अब कौन सी तारीख है, तो वो लोग आसमान पे देख के ही बता दिया करते थे। इसी तरह सूरज से टाइम, ये दोनों अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, ये नहीं कि सूरज क्रिश्चियंस का है और चांद मुसलमानों का है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज जो है देखिए आप, वो टाइम के लिए, अब टाइम आपको पता चल जाता है सूरज को देख के कि इस वक्त 10 बजे होंगे, इस वक्त अगर घड़ी नहीं भी हो, तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ी हमारे लिए एक नेमत दी, एक रहमत बना दिया। आप सिर्फ अपने टाइम को ना ना सोचें कि ये आज के दौर के अंदर तो हमारे पास फोन ही है, उसमें ही सब कुछ है, पहले जमानों के अंदर क्या था, लाखों सालों से लोग रह रहे हैं। तो और हज, हज का बताने के लिए, अब रमजान का क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि हम तो चांद का सोचते ही क्या दिमाग में आता है, रमजान, लेकिन रमजान की पहले बात हो चुकी है इसलिए, और अब हज की बात की गई क्योंकि हज के लिए भी चांद देखा जाता है ना कि कब हज की तारीखें आ रही हैं। और हज का कह के एक इंडिकेशन दे दी गई मुसलमानों को, ये मदनी सूरत है ना सूरह बकरा, कि वो हज के लिए जाएंगे, इट्स इट्स एक इशारा उनको दे दिया गया, एक साइन है ये। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेक, नेक नेकी या नेक होना इसमें नहीं है, बे अंता तुर बुयो तमें दूर रिहा, कि तुम घरों में पिछली तरफ से आओ, इसका क्या माना हुआ? असल में यहां पर फिर ये चांद का बता के एक और चीज को जो हज उमरे से मुतल्लिक थी उसको बताया गया। लोग उस जमाने में उनके भी कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस बातें थी ना, जैसे आज हमारे भी कई चीजें हैं, भाई ये हो जाए तो ये नहीं करना है, ऐसे हो जाए तो वो कहते हैं भाई अगर चांद ग्रहण लग जाए या सूरज ग्रहण लग जाए तो जो प्रेग्नेंट है वो पता नहीं बैठे नहीं या कोई काम नहीं करे या छुरी से ना काम करे या क्या ना करे, अगर वो कर लिया तो बच्चे को पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इस तरह की कई तोहमात हमारे अंदर भी होती है, ये तो एक एग्जाम्पल है और बेशुमार है। तो उनके अंदर भी एक क्या चीज थी, वो कहते थे कि जब हम एहराम बांध के निकल पड़े हैं घर से तो अब वापस घर आना ये बदशगुनी है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि वापस आ गया। जैसे वो कहते हैं ना कि अब पीछे से ना आवाज देना, पीछे से आवाज देना तो मतलब अब हमें हमारा काम ही नहीं होगा, जिस काम को हम जा रहे थे उसने अब होना ही नहीं, क्यों आपने पीछे से क्यों आवाज दी, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने भी रखी हुई है। तो उनके अंदर भी ऐसी चीज थी। फिर वो क्या करते थे, अब घर में अगर मसलन कोई चीज रह गई है तो अब जा तो सकते नहीं वापस घर, तो क्या करते थे फ्रंट से नहीं फिर जाते थे, बैक से घर में दाखिल होते थे और वो चीज लेकर आते थे, या कोई भी काम है जो उनको अब रह गया। कई चीजें होती हैं इंसान घर से निकलता है पीछे रह जाती है फिर इंसान मुड़ के आता है, तो वो कहते थे अब फ्रंट डोर से नहीं जाना अब हम बैक से जाएंगे। और अरबों में एक मुहावरा ये भी है कि दरवाजे से दाखिल हो, यानी स्ट्रेट करो हर काम, तो इसमें एक ये भी इंडिकेशन है कि उल्टे काम ना करो, जो भी काम करो स्ट्रेट करो सीधा करो, क्योंकि आगे आ गया है कि पीछे से नहीं जाना आगे से जाना है। तो अब ये इनके यहाँ नेकी समझी जाती थी कि देखो हम पीछे से जाते हैं घरों के, हम आगे से नहीं जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें कोई नेकी नहीं है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत तकवा की बात की बड़ी, देखो हम कितने, जैसे हम एक बना लेते ना जहन में कि बस नेकी ये चीज है, ये इसके अंदर बहुत नेकी है, खुद ही बनाई हुई है चीजें, और उनको नेकी समझ के उनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना, और बाकी जो चीजें अल्लाह ताला ने बताई हैं उनकी कोई परवाह नहीं। मिसाल के तौर पे कोई एक चीज को मसलन मिसाल ऐसे दे रही हूँ, एक मसलन कोई आदमी समझ ले कि दाढ़ी रखना बहुत बड़ी नेकी है, वो सुन्नत है बेशक और जरूरी है रखना, लेकिन बस इसी के अंदर नेकी है, और जिसने नहीं रखी तो वो उसके बारे में समझना कि ये तो कोई नेकी नहीं, हम बस सबसे बड़े नेक हैं, चाहे हम हराम खा रहे हैं, चाहे हमारे बुरे सलूक के लोगों के साथ, चाहे हमारे रवैयों को देख के लोग हमसे दूर भागते हैं, चाहे हमसे कोई बात कर ले तो हम खाने को दौड़ते हैं, चाहे हमारा दिमाग आसमान पे रहता है हमारे अंदर तकब्बुर इतना है, वो उसकी नहीं कोई परवाह, बस ये चीज है कि हमारी ये नेकी है। बाज दफा हम नेकी का एक कोई तसव्वुर अपने जहन में बांध लेते हैं ना, और फिर या फॉर एग्जाम्पल बाज लोगों के जहन में ये होता है जिनके घर टीवी नहीं होता ना वो बहुत नेक लोग होते हैं, देखा इनके घर टीवी नहीं है, तो देखो हम अपनी तरफ से एक बना लिया तसव्वुर। तो इस तरह कई चीजें हमने ना खुद ही बस एक नेकी के बना लिए हैं कि ये बस नेकी है, और उसके अंदर रह के हम इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हमें ये नहीं परवाह कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हमने पीछे पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, इतनी बड़ी आयत आयते बिर पढ़ी है, ये बिर क्या है नेकी क्या है, अल्लाह ताला ने उसी को शॉर्ट करके यहाँ पे फरमा दिया वलाकिन्नल बिर्र मन तक्वा, लेकिन नेकी क्या है, तकवा है, वो जो सारी आयत है ना उसको एक लफ्ज तकवा में समो दिया, वो सारी आयत पढ़ लें वो नेकी है, और उसको एक लफ्ज में बयान कर दें तो वो तकवा है, कि गुनाहों से बचना और नेकी के लिए दौड़ना, उसका शौक रखना कि अल्लाह राजी हो जाए, गुनाह से इसलिए नहीं बचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अच्छा ये ऐसे करती है, इसलिए नहीं बच रहे गुनाह से, किस लिए बच रहे ये अल्लाह ना नाराज हो जाए, ये है तकवा। अगर आप गुनाहों से इसलिए बचते हैं ना कि हमसाए क्या कहेंगे, वो देख लेगी तो क्या कहेगी, उनके हम घर जा रहे हैं वो उनको पता चल गया तो वो बातें बनाएंगे, फलां हमारे घर आ रहा है वो चीज देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि अच्छा ये करते हैं मैं इसको हटा दूं, ये नेकी नहीं है, ये तकवा नहीं कहलाता, तकवा ये है कि अल्लाह के खौफ से किसी बुराई को छोड़ा जाए, तकवा ये है कि नेकी को किया जाए अल्लाह की रजा के लिए, जैसे ये चीज करना कि किसी को दिखाने के लिए कोई नेकी करना ये नेकी को जाया कर देता है, इसी तरह अगर किसी गुनाह से आप सिर्फ इसलिए बचते हैं कि लोग क्या कहें वो ना कहें, और आपको अल्लाह का कोई खौफ नहीं बस लोगों का है, तो ये तो कोई तकवा नहीं, ये कोई गुनाह से बचना नहीं। लेकिन नलबिरा मन तका, लेकिन नेकी ये है कि तकवा इख्तियार किया जाए, उसकी तरफ तवज्जो दो। वातुल बुयुता मिन अबवा बिहा, घरों से उनके फ्रंट से आओ, उनके दरवाजों से आओ। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अंदर मुहावरा ये था, दरवाजे से दाखिल हो, स्ट्रेट काम करो ना। ये तो एक साइड की बात है, लेकिन अब इनको क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें पीछे से आने की जरूरत नहीं, तुम फ्रंट डोर से आओ, असल नेकी की तरफ तवज्जो दो। ये खुद से एक कॉन्सेप्ट बना लेना, ये कुछ नहीं। हमें भी देखना चाहिए कि हमने कितनी चीजों को खुद ही एक बस नेकी का बना के एक तसव्वुर, और उसको हम समझने लगते हैं कि बस ये कर लूंगी तो मैं बस बहुत नेक हूं, या सुपरस्टिशियस बातें बताएं तो हम परस्ती में हम बहुत मुब्तला रहते हैं। और कुछ लोगों को तो इतना वहम रहता है, हर वक्त वो वहम का शिकार होते, मरीज होते हैं वो वहम के, ये ऐसे हो गया तो उसने ये कह दी ना, देखा इसीलिए ये हुआ, उसने वो बोल दिया तो इसलिए देखा ये ऐसे हो गया। तो भाई अगर लोगों के बोलने से या आपकी तरफ देखने से या कुछ कहने से ही चीजें हो जाती होती, तो फिर तो दुनिया में अल्लाह ताला की तो नाउज बिल्ला उसकी नहीं होती, बल्कि ये लोगों की बातों से ही चीजें हो जाया करती। तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह के करने से चीज होती है, कुछ किसी के कहने, किसी के आने, किसी के जाने, किसी के आवाज देने, किसी दिन के होने, इनसे नहीं होती चीजें। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी फलाह पाने के लिए क्या जरूरी है? तकवा। आप देखेंगे इस लेसन में तकवा की कितनी तकरार है, पिछले में भी हमने तकवा पढ़ा था कि आप रोजा भी क्यों रख रहे हैं, तकवा के लिए। वकातिलू फी सबीलिल्लाह, और लड़ो अल्लाह के रास्ते में। अल्लदीना युकातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं। किताल फी सबीलिल्लाह, इसकी बात आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बात आ रही है उन उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो ये बात आ रही है कि जिसके अंदर मुशरिकी ने मक्का, जिन्होंने मुसलमानों को निकाला था उनके घरों से, और उनकी सोचें कि किस किस्म का वहां का मक्का का माहौल अपने जहन में जरा लेकर आए, कि किस किस्म के उनके लिए हालात पैदा कर दिए थे कि उनके लिए वहां पे रहना मुश्किल हो गया था, उनके लिए वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। इस्लाम का मतलब टॉर्चर था, इस्लाम का मतलब ये था कि वो आपकी जिंदगी खत्म कर देंगे, इस कदर ज्यादा उनके ऊपर जुल्म किया जाता था जो कोई इस्लाम ले ले आता था। तो यहाँ पे अब बताया गया कि अब हिजरत मदीना हो गई है, पहले मक्का के अंदर क्या हुक्म था मुसलमानों को, कुफू अईदिया करो, अपने हाथों को रोक लो, अब तुमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ये उन मुसलमानों को कहा गया था। मगर यहां पर अब ये याद रखिएगा, यहां पर किताल की इजाजत दे दी गई, वहां पे क्यों नहीं दी गई थी? इसलिए कि अगर वहां मुसलमान, मसलन है हजरत बिलाल है, अब वहां पे वो एक बेबस बेबसी के उसके अंदर है, गुलाम भी हैं, और फिर मुसलमानों की तादाद भी कोई ऐसी नहीं है कि उनके साथ कोई खड़े हो सके, कोई पावर नहीं है मुसलमानों के साथ। अगर वो समझे उमैया उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, और वो भी एक उसको लगा देते, आखिर एक इंसान होता है मरने से पहले वो खुद भी किसी को मारता ही है, या उसके ऊपर कोई मसला हो रहा हो, कोई तशद्दुद हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा होता है, एक घूंसा तो वो भी लगा सकता है, लेकिन उसके बाद होना क्या था, क्या उन्होंने बचना था? मार दिए जाते। तो मुसलमानों को कहा गया था नहीं, यहाँ पे कितना भी जुल्म हो जाए, हजरत खबाब को कोयलों के ऊपर लिटाया जाता था, तो कहा गया कितना भी जुल्म हो जाए यहाँ पर आपने कोई रिटेलिएशन नहीं करनी, बदला नहीं लेना, आपने हाथ ही नहीं उठाना। कुफू अईदिया को सूरह निसा में आता है कि मुसलमानों को कहा गया था रोको अपने हाथों को बस, लेकिन दैट्स इट नाउ, हमेशा रोके नहीं रखना। अब वक्त आ गया, अब हिजरत हो गई, अब मुसलमानों ने एक स्टेट कायम कर ली, अब ये सब हो गया, तो अब कहा गया अब आप बदला ले सकते हैं, अब आप लड़ सकते हैं, अब आप जंग कर सकते हैं।
लेकिन इससे पहले सूरह हज में भी ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उदीना लिल्लजीना युकातिलूना बि अन्नहुम जुलिमू, इजाजत दे दी गई लड़ने की उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया, उनको इजाजत दे दी गई। तो ये आयत उतरी थी और उसके बाद ये आयत आ गई है अब यहाँ पे भी, कि चूंकि जुल्म किया गया अब आपको लड़ने की इजाजत है। अब जुल्म समझते हैं ना कि क्या इनके ऊपर जुल्म हुआ था। तो ये शुरू की यानी आयत में से है कि अब आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किन के साथ? ऐसे नहीं कि निकल पड़े तो हर तरफ ही लड़ने, नहीं, अल्लदीना युकातिलून, जो तुमसे लड़ते थे, यानी एक तो वो कि उनके साथ लड़ा जाए जिन जिन्होंने आपके साथ लड़ाई की थी, दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि उनसे लड़ाई की मुमानियत पता चल रही है, जो आपसे लड़ने नहीं आ रहे उनके साथ आपने नहीं लड़ना, उनसे ही लड़ना है जो आपसे लड़ने आ रहे हैं। कौन कौन नहीं आते लड़ने के लिए? मसलन कोई औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो अगर आपसे लड़ने नहीं आ रहे हैं तो आप भी उनसे जाके ना उनको मारो ना उनसे लड़ो, सिवाय उन औरतों के जो खुद जंगों में हिस्सा लेती हैं, खुद जंग के लिए आती हैं, उनके साथ तो लड़ाई करेंगे ही, लेकिन जो औरतें घरों में बैठी हैं उनके खामखा जाके मारना, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, इनके साथ जंग करना, उनको मारना, ये किसी तरह भी जायज नहीं। ये इससे हमें यहाँ पे इस्लाम के जंग के जो कवायद हैं, रूल्स हैं, वो भी पता चलते हैं। और इसके साइड नोट पे आप ये भी लिखने के इसी तरह वो लोग भी जो कि अपने दीन की, यानी जैसे होता है ना राहिब वगैरह लोग के रबानियत इख्तियार कर ले, दीन में इतने मशगूल हैं वो, अपने मजहब के अंदर ही लगे हुए हैं, अपनी इबादत में लगे हुए हैं, कोई पादरी हैं, कोई कुछ हैं, बस वो अपने गिरजों में ही रहते हैं, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, उनका ना किसी से कोई सरोकार, ना लेना ना देना, वो अपने उनको भी नहीं मारना। इससे पता चलता है, सुभान अल्लाह, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगी इस बात को, इस्लाम ऐसे नहीं कहता कि इसलिए कि वो काफिर है ना तो इसलिए उसको मार दो, तो वो तो फिर सबसे पहले इनको मारना चाहिए था, वो जो राहिब है और पादरी है, क्योंकि ये काफिर है, तो ऐसे नहीं है इस्लाम के अंदर। इसी तरह जो हैंडीकैप्ड है घरों में बैठे हुए हैं उनको खामखा जाके मारना, इस तरह वो लोग जो जंग में शरीक ही नहीं होते उनका कोई लेना देना नहीं, वो इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं, उनको भी नहीं मारना, इनको मारने से मना किया गया। उन लोगों से किताल करो जो तुम्हारे मुकाबले में आते हैं, तो इनसे फिर ये सब लोग एग्जेम्प्टेड हो गए। ठीक, वला तातदू, और तुम ज्यादती ना करना, देखना तुमसे कोई ज्यादती ना हो जाए। अब देखें ज्यादती क्या है, एक एक जाके औरतों बच्चों को मारा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है। ठीक है, किसी बूढ़े जईफ को मारा जाए, किसी छोटे बच्चे को मारा जाए, अब आज की जंगें देख लें, ये इस्लाम को तो कहते हैं ना कि इस्लाम ने तो इस्लाम तो ऐसे जिहाद का कहता है, तो देखो तो सही कि इस्लाम कहता क्या है, तुम आज के वक्त में देख लो दरिंदगी है। आ गया वला तातदू, तुमने कोई ज्यादती नहीं करनी या उनसे जाके लड़ना जिन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं आपको कहा, उनके ऊपर खामखास से हथियार उठा लेना, ये भी एक ज्यादती है ना, तो तुमने ज्यादती नहीं करनी। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि जब जंग होती है ना तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि इंसान जाहिर अपने दुश्मन के आगे खड़ा होगा कि वो कुछ ना कुछ ज्यादती कर देगा, इसलिए क्योंकि दुश्मन के साथ उसकी बात है ना, वो दोस्त के साथ तो नहीं जंग कर रहा, जब दुश्मन आएगा तो फिर वो उसको उनसे नफरत है या उससे वो बदला लेना चाहता है, तो वो बदले में हद से बढ़ जाता है, नाक कान काट देता है किसी को कत्ल करके भी, उसको जो है ना उसकी लाश का मुसला करता है, ये भी ज्यादती है। तो ये इस्लाम ने कहा कि ज्यादती नहीं। और आपने देखा था ना पीछे हमने पढ़ा था क़िसास के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, ये अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, तो क्या मतलब था? वहां पे तो खैर एक जुर्म की बात हो रही थी ना कत्ल की, कि औरत ने कत्ल किया तो और वही औरत ही कत्ल की जाएगी, गुलाम ने कत्ल किया तो वही गुलाम ही कत्ल किया जाए। इसी तरह ये ऐसा नहीं है कि यानी किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई गलत किया है, अब किया किसी ने और उसका बदला लेने के लिए किसी और को मारा जाए, समझ आई। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे किसी के साथ, किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती की है, तो अब वो उठ के ये नहीं करेगा कि मैं भी इसकी बेटी के साथ यही करूंगा। किसी ने किसी का बच्चा हुआ कर लिया, अल्लाह माफ करे, तो वो नहीं, ये नहीं करेगा मैं भी इसका बच्चा हुआ कर लेता हूं, यही इसका बदला है। नहीं, वो जो मुजरिम है उसको सजा दी जाएगी, ना कि उसके इर्द गिर्द के इनोसेंट पीपल को सजा दी जाए। ये ज्यादतियां होती हैं और अक्सर होती हैं जब दुश्मनियां होती हैं, अक्सर होती हैं जहां पे इंसान की किसी नहीं बनती, तो बदला लेने की शर्त ही है ज्यादती नहीं करनी। आगे भी आएगा उतना ही बदला जितनी कि तुम्हारे पास ज्यादती हुई है, ये तकवा का तकाजा है, मुत्तकी ऐसा ही होता है। जैसे हजरत अली की मिसाल आती है ना कि वो एक जंग में थे, तो जंग में जब दूसरे ने जो जिसके जो यहूदी था जिसको मारने लगे थे, तो जब उसके ऊपर तलवार उठाई है और अभी वार करने लगे हैं, तो उसने थूक दिया उनके ऊपर। अब खुद सोचें, जरा जरा सी देर के लिए सोचें, एक दो दुश्मन है हाथ में है और पहले ही उससे दुश्मनी है और पहले ही उसके साथ लड़ने के लिए खड़े हैं, ऊपर से उसने थूक भी दिया, तो और ज्यादा मारेगा ना इंसान, कोई भी होगा तो क्या करेगा, और ज्यादा जोर से मारेगा कि अभी तुझे बताता हूं। लेकिन क्या इन्होंने क्या किया, तलवार वापस रख ली। वो भी हैरान कि ये क्या हुआ, जो कहते हैं पहले मैं अल्लाह की खातिर मारने लगा था, अब मेरे अंदर मेरा अपना गुस्सा आ गया। अल्लाह हु अकबर, ये होता है अल्लाह का डर, ज्यादती नहीं। यानी किसी के साथ भी जब जंग होगी तो वो कलिमतुल्लाह की बुलंदी के लिए होगी, या कोई ऐसी परसिक्यूशन है, आगे बात आ रही है हम इसको और बढ़ाते हैं, उसके उसके डिफेंस में उसको खत्म करने के लिए होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, याद रखना अल्लाह ज्यादती करने को पसंद नहीं करता, ज्यादती करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादती करेगा ना, अल्लाह की नुसरत, उसकी मदद, उसकी बैकिंग, उसकी सपोर्ट उसके साथ नहीं होगी। जो अल्लाह के तरीकों को तोड़ता है, अल्लाह ने कहा कि ला ताता दू, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो करेंगे, इन्होंने हमारा एक मारा है ना, हम इनके 10 मारेंगे। इंडिया वहां पे जंग कर रहे हैं ना, तो हम यहां पे आके इनकी ट्रेनों में, इनके बाजारों में, इनकी बिल्डिंगों में बस हम खुली फायरिंग शुरू कर देंगे। क्यों, इसलिए कर देंगे क्योंकि ये भी तो हमारे कहीं मार रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लदीना युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं, जो कोई अपने काम करने के लिए गया, अपने कारोबार करने के लिए गया, अपनी रोजी कमाने के लिए है, जो कोई वैसे ही बाहर निकला हुआ है, कोई बीमार है, कोई अपने इलाज के लिए जा रहा है, सबको मारने शुरू कर दोगे। सिर्फ किस लिए, वो फलां जगह पे इस कौम के लोग या फलां जगह पे कोई और लोग और कोई भी कहीं पे उनका गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं, तो तुम ज्यादती नहीं कर सकते, ये रूल है इस्लाम का। इसी वजह से आज जब मुसलमान ज्यादती करने पे उतर आए हुए हैं ना, तो अल्लाह की नुसरत नहीं है उनके साथ, ये सिर्फ अपनी जज्बात की तस्कीन हो सकती है, अपने गुस्से को निकालना हो सकता है, अपनी भड़ास निकालना, जब कोई खबरों में कोई चीज देख ली है तो अपनी भड़ास कैसे निकालें, अब कहीं ना कहीं जाके कुछ करना, ये फिर तो दुरुस्त नहीं है, ये तो सही नहीं है कि अपनी इंतकामी कार्रवाई के लिए ये ऐसे इकदाम किए जाएं। इस चीज को आपने खुद भी समझना है, और याद रखिए अपने घरों में भी इन आयात को शेयर करना है, ताकि हमारे बच्चों को पता हो, हमारे लड़कों को पता हो कि क्या चीज है इस्लाम में जिहाद, क्या चीज है लड़ना। ये जो आजकल जुनून है ना, ये जिहाद जिहाद करके पागल हो जाते हैं हम, ऐसे नहीं है कि कोई रूल्स के बगैर ही किसी सबको लूज छोड़ दिया गया। आप सोचें, अगर अल्लाह ताला ने हर चीज के रूल्स हमें बताए तो क्या इसके नहीं बताए होंगे, उनके हमें कोई परवाह ही नहीं। बस कोई भी पीछे लगा ले, कोई भी कह दे कि हाँ चलो अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, तो हम चल पड़ेंगे। ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें आगे हम चलते हैं, या तो मैं आपको तो आगे बताती हूँ, अदरवाइज देखें जंग के कवायद में चले, आप बात चली है तो यहीं पर बता देती हूँ। एक ये भी है कि आप ना इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, ये ना दरख्तों को काट सकते हैं, ना आप ऐसी चीजों को, या जैसे जो चीजें जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिन लोगों का या जिन जगहों का, जैसे इबादत गाहें हैं, खानकाहें हैं, चर्च हैं, या कोई और इस तरह की चीजें, सिनागॉग्स हैं, उनको भी नहीं आप टारगेट बना सकते। इससे पता चलता है ये सारा कुछ ज्यादती में आ जाता है। इससे पता चलता है जो आज की जंगी चीजें हैं वो तो इस्लाम के है ही नहीं, कि ऊपर ऊपर से बम गिरा दिए, सारी आबादी को मिटा के रख दिया, तहस नहस कर दिया। उसमें इंसान भी गए, जानवर भी गए, चरिंद परिंद भी गए, खेतियां भी गई, दरख्त भी गए, बिल्डिंग भी गए, सब खत्म हो गया। ये तो इस्लाम में नहीं है। या कोई बम बांध के किसी जगह चला जाता है, कोई खुद को हमला कर लेता है, कोई गन लेके जा कहीं घुस जाता है, वहां पे बेदरेक कत्ल कर रहा है, ये इस्लाम में नहीं है। ये अपने गुस्से हैं, ये इस्लाम में नहीं है। और उससे पूछा जाए इन्होंने क्या किया, इनका क्या कसूर है, तो वो खुद भी नहीं बता सकता, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो फिर किससे लड़ रहे हो तुम? तो ये कुछ और तो कहला सकती है, मगर अल्लाह के दीन की खातिर लड़ना नहीं होता। ये कोई सरफिरा किसी दिन तैश में आके किसी मासूमों को, निहत्ते लोगों को जो आपको कुछ नहीं कह रहे, उन पर हथियार उठा ले और उनको खत्म करे। तो अक्सर हमारे सामने ये याद रखिए, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर ही कुछ कराए जाते हैं काम इस किस्म के, और हम फौरन सोचते हैं बस अल्लाह रसूल का नाम ले लिया ना, फी सबीलिल्लाह ना, बस किसी ने फी सबीलिल्लाह क्या कह दिया, हम तो वहीं पे बस बिछ जाते हैं। आप ये नहीं कभी सोचते कि शैतान भी तो अपने काम करवा सकता है ऐसे, उसको पता है इंसान की कमजोरी क्या है, उसको पता है ये अल्लाह के नाम पे कुछ भी कर लेगा, तो इसको तो ये चारा डालो। वो फिर जब ऐसे काम करवा लेता है तो उससे क्या होता है, क्या इस्लाम का नाम बुलंद होता है, क्या उससे पावर हासिल हो जाती है इस्लाम को, क्या क्या मिलता है? तो इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है दीने इस्लाम की भी, और लोगों को जो इस्लाम की तरफ आने में रगबत रखते हैं उनको भी दूर किया जाता है, और जो ऑलरेडी इस्लाम में है उनके अंदर भी शकुक व शुभात पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसा दीन है, क्योंकि जो बंदा ये काम कर रहा है वो इस्लाम के नाम पे कर रहा है, तो वो इस्लाम के कॉज को फायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है, वो इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहा, उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए, कोई भी नारा है तकबीर कह दे तो हम बिछ ना जाया करें, हमारे आंसू ना निकला करें कि ओ नारा है तकबीर कह दिया बस इसके पीछे चल पड़ो। अपनी अकलें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, होश से काम लेना चाहिए, देखें अपने कुरान को, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, फिर किसी को समझें कि ये सही भी मुझे बुला रहा है कि नहीं। आजकल ऐसी चीजें इंटरनेट पे भी हैं, ऐसी लोग भी हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं, मस्जिद में बाज दफा ऐसे लोग बैठे होते हैं जो नौजवानों को ट्रैप करते हैं। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को जानना, हम डरते हैं सब्जेक्ट को जानने से भी, या तो इतना खौफ है या फिर इतने पागल हो जाते हैं कि इस शौक के अंदर कि हम तो बहुत नेकी का काम कर, गलत जगहों पे जाके फंस जाते हैं। ये इससे ज्यादा क्या मुझे बताएं, क्लियर बात होगी, वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। इतनी कोशिशें हमारी दीन की दावत देने के लिए अगर हो ना, जितनी हम ये इस किस्म की सरगर्मियों में लगाते हैं, तो कितना दीन फैल जाए। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं होती, सिर्फ ये मार कुटाई की तरफ होती, क्योंकि अक्सर लोगों की वो गुस्से और चीजों पे होते हैं, वो निकालते इसमें। वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, तुम कत्ल करो उनको जहां भी तुम पाओ उनको। अब ये क्या बात हुई, इस आयत को भी लेके गैर मुस्लिमों ने इतना प्रोपगेंडा किया, देखो जी इनके कुरान में क्या है, इनके कुरान में तो यह है कि जहां पे ये मिले उनको मार दो। खुदा के बंदो आगे भी तो पढ़ लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है, किनको कहा जा रहा है। जरा सा भी आप अगला लफ्ज पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी आपको किसी दिन ये आयात मुंह पे रख के कहेगा ये देखें आपके तो कुरान में ही है, फिर हम ऐसे हो जाते हैं हाय जैसे पता नहीं अब हम कितने मतलब अपोलोजेटिक हैं, या हमें खुद समझ नहीं आती कि हम कैसे जवाब दें। ये आज की जरूरत है कि आप इन आयात को समझें। तो किसको कहा जा रहा है, जहां तुम पाओ इनको, इनको कत्ल करो। और आगे पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। वह अखरिजूहुम मिन हैथु अखरजूकुम, और निकालो इनको जहां से उन्होंने निकाला तुमको। अब ये आयात इनके बारे में आता है कि ये जिस वक्त कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया का वाकया हुआ था, तो उस वक्त नाजिल हुई थी ये आयत, कि जिसमें बताया गया कि यानी सुलह हुदैबिया में आपको आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उम्रा करने के लिए गए और उनको रोक दिया गया और कहा गया अगले साल आओ। अब अगले साल से जिस वक्त उम्रा कजा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जाने का इरादा किया, तो उन्होंने सोचा कि अब ये इनने उन्हें पिछले साल तो हमें जाने नहीं दिया, अब अगर हम इस दफा जाते हैं, पता नहीं है कि हमें जाने देते हैं नहीं जाने देते, या ये ना हो कि वहां पे हमारे साथ जंग शुरू कर दें, हम जा रहे हैं आराम में, वहां पे वो अपना मुआहदा तोड़ के और हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें, तो हम क्या करें फिर? क्या हम फिर जंग कर सकते हैं उनके साथ? क्या हम उनके साथ लड़ सकते हैं? तो फिर कहा गया अगर वो तुमसे किताल करें तो फिर तुम भी जहां उनको पाओ तुम भी उनसे किताल करना, फिर तुम्हें भी इजाजत है, ठीक है? और अगर जिन्होंने तुम्हें वहां से निकाला है तुम भी उनको निकालो फिर वहां से। और ये आप किसी भी आम जिंदगी में कैसे रख सकते हैं, वाखरी जू मिन है इसु अखरा जू को, किसको आप कहेंगे निकालो तुम उनको वहां से जिन्होंने निकाला तुमको? कैसे इसको समझेंगे जब तक इस चीज को, इस बात को, इस बैकग्राउंड को ना समझा जाए कि ये उनके लिए थी क्योंकि उन्होंने उनको उनके घरों से निकाल दिया। बता और फरमाया वल फितनत व अशद्द मिनल कत्ल, याद रखो फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। फितना क्या चीज है? एक तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना कि देखें इस्लाम तो इतना पीसफुल रिलीजन है, तो इसमें ये कैसी बात हुई कि इनको कत्ल करो जहां पे तुम जहां तुम इनको पाओ, और ये तो बहुत बुरी बात हो गई ना। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया ये बल फितना तो अशद्दु मिन कत्ल, फितना तो तुम ये सोचते हो कि अच्छा इनको मारना बुरा है, तो फितना क्या है? फितना तो कत्ल करने से भी ज्यादा बुरा बुरी चीज है। वो क्या चीज होती है फितना? फितना है रिलीजियस परसिक्यूशन, मजहबी जबर जिसको कहेंगे आप। और मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं फितना क्या चीज है। फितना वो है कि किसी को सिर्फ इसलिए सताया जाए, मारा जाए, जुल्म किया जाए, उनकी औरतों को की इज्जतें लूटी जाएं, उनको कहीं वो महफूज ना हो, सिर्फ किस लिए कि वो एक अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, या वो इस्लाम क्यों लेकर आए, इनको इस्लाम से फेरने के लिए। ये होती है रिलीजियस परसिक्यूशन के दीन को प्रैक्टिस नहीं तुम कर सकते, तुम इस दीन पे कैसे आ गए, तुम इसको छोड़ो, ये है रिलीजियस परसिक्यूशन, ये है मजहबी जबर। तुम्हारा कसूर क्या, हम क्यों तुम्हें मार रहे हैं, तुम ये क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, तुम क्यों इस्लाम लेकर आए, तुम मुसलमान क्यों हो, ये है फितना, समझे? इसको कहते हैं फितना। ये इतनी बुरी चीज है, ये इतनी बुरी चीज है कि ये कत्ल से भी ज्यादा बुरा है, इसको कहा गया ये जंग से भी ज्यादा बुरा है। इतनी बड़ी बुराई है, क्योंकि ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। इसके ऊपर तो अल्लाह ने जिन जो उसका नाम नहीं लेते, उन जो उसका इनकार करते हैं, जो उसके साथ शिर्क करके उसको गाली देते हैं, ये तो अल्लाह ताला का तहम्मुल है, उसका सबर है कि वो उनको भी रहने देता है, वो उनको भी खिला रहा है पिला रहा है। लेकिन अब ये मतलब नहीं कि वो जो अल्लाह का नाम लेवा है
उसको तुम पकड़ के इतना उसके ऊपर जुल्म करो सिर्फ इसलिए कि क्यों तुम अल्लाह का नाम लेते हो। ये तो हक हक ही ये था इस जमीन पे रहने का कि तुम अल्लाह का नाम लो, तुम अल्लाह के दीन पे चलो, यही हक था। लेकिन वो तो हक उससे छीनने के लिए खड़े हो गए, तो ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद, ये नहीं उसको गवारा। फिर कैसे नहीं हो सकता कि तुम कोई इंसान कहता कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, मैं इस्लाम में एंटर होना चाहता हूं, तुम उसके साथ वो हाल करो कि वो इसे फिर के रहे। जैसे आज आप देखें दुनिया में कितने कंट्रीज हैं जहां पे ये हो रहा है कि इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हें हम ये करेंगे, तुम मुसलमान क्यों हो? यानी इतना किसी को मजबूर कर दिया जाना कि वो इस्लाम को ही छोड़ दे, इतना उसके ऊपर जुल्म करना, इतना उसको यानी गैर महफूज कर देना, इनसिक्योर कर देना, या उठा के डिटेंशन कैंप्स में डाल देना, या वहां पे ब्रेन वॉशिंग करना, या ऐसा जबर करना उनके ऊपर कि वो अल्लाह का कलिमा बोले तो उसकी जुबान खींच ली जाए। ये दुनिया में बहुत जगह, और हम आज सोचते हैं ना कैसे मक्का के अंदर होती होगी रिलीजियस परसिक्यूशन, वो अगर आपने देखनी तो आज ही देख लें, 1400 साल पहले का क्या बात करनी, आप आज देख लें आज के हालात के अंदर कैसे होती है। ये वर्स है, तुम कहते हो कत्ल बुरी चीज है, ये उससे भी वर्स है कि किसी को इस्लाम को छोड़ने पे मजबूर किया जाए, किसी को सजाएं सिर्फ इसलिए दी जाए वो मुसलमान है, बस ये उसका कसूर है। और याद रखें इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड होके कह सकते हैं कि तमाम अदियान ये इसलिए दूसरों से दुश्मनी रखते हैं कि दूसरा किसी और मजहब से क्यों है, जबकि इस्लाम इतना टॉलरेंट है रिलीजन, सुभान अल्लाह। हालांकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह के कलमा को ही बुलंद होना चाहिए, इसके अलावा किसी और का हक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए इस प्लेनेट अर्थ पे। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम नहीं तुम्हें कहेंगे कि तुम जरूरी मुसलमान हो जाओ, हम नहीं तुम्हें इस बात पे मारेंगे कि तुम हिंदू क्यों हो, तुम क्रिश्चियन क्यों हो, तुम यहूदी क्यों हो, तुम मुशरिक क्यों हो, हम नहीं कभी तुम्हें इस बात पे मारेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फ्रीडम दी है, अल्लाह ने फ्रीडम दी है, जो चाहे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, जो चाहे काफिर रहे, जो चाहे मुसलमान हो जाए, जो चाहे मोमिन हो, अल्लाह ताला ने ये दी है फ्रीडम, हम तो नहीं किसी से छीनते। किसी को नहीं देखा होगा किसी को मारते हुए कि मार मार के उसको मुसलमान बना रहा, तुम हिंदू क्यों हो, तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं हम कहते हैं नहीं हमारे तुमने खुशी से होना है तो हो, लेकिन हम नहीं तुम्हें कहेंगे तुम अपने रिलीजन में रहो, तुम्हारा दिल कायल होता है तुम आओ, लेकिन अदरवाइज तो देखें आज दूसरे लोग अपने मजहब के नारे लगवाते हैं लोगों से कि बोलो हमारे खुदा का नाम तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। इस्लाम नहीं ये कहता कि तुम किसी से जबरदस्ती किसी मुशरिक को कहोगे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं, हमें नहीं जरूरत इसकी, इस्लाम बेनियाज है इससे। पूरी दुनिया भी इस जमीन के ऊपर शिर्क करे तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझे मेरी बादशाही में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आता, अगर पूरी दुनिया हर जिन और इंस और बूढ़ा और जवान और बच्चा मर्द और औरत सब तुम में सबसे ज्यादा गुनाहगार के दिल की तरह हो जाए तो मेरी बादशाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को जरूरत नहीं है। और तुम्हें जरूरत होगी कि तुम्हारे काम होंगे किसी के तो वो चाहता है कि और हो जाए उसको पूजने वाले, तुम्हारे जिनको तुम खुदा मानते हो उनको जरूरत होगी, हमारे रब को तो जरूरत नहीं, उसके लिए तो आज सारी कायनात बिछी हुई है, जमीनों आसमान जिसके सामने इताअत गुजार है और जो कुछ इसमें है। तो जो कोई खुशी से आना चाहे बी प्राउड कि आप मुस्लिम है, ये नहीं कि हम हाय अब बिछ रहे हैं अरे ऐसे हो रहे हैं कि हाय पता नहीं हमारे कितने कसूर हो गए कि हम मुसलमान, नहीं ये वक्त है सर उठा के जीने का, ये आप सर उठा के जिए कि आप हक पे हैं, शर्मा के नहीं, झिझक के नहीं, डर के नहीं। वो फितना अशद्दु मिनल कत्ल है, कोई भी फितना बर्पा करेगा तो फिर वो उसको उसका साथ मुकाबला किया ही जाएगा ना, क्या करे एक बंदा मसला ना कि वो कॉर्नर कर दिया जाए, उसको इतना मारा जा रहा है उसको कॉर्नर के, क्या वो हाथ ना उठाए? हमारा दीन ये नहीं कहता उनकी तरह ईसाइयों की तरह कि जैसे ईसाइयों के अंदर है इधर थप्पड़ तुमने मारा ना ये लो दूसरा भी गाल इधर भी मार दो, इस्लाम कहता नहीं, जिसने जो किया है उसका उसका बदला है, दिस इज नेचुरल।
इंसान, लेकिन बदला फिर उतना ही होगा, बस आगे आ रही है बात। वला तो कातिलू हम इंदल मस्जिद अल हराम, और देखो इनको साथ ना लड़ना तुम पास मस्जिद हराम के, हत्ता यू कातिल हुकुम फी। अब ये बता नहीं रही है आपको कि ये उस वक्त की आयत है, कौन इसको आज के वक्त के अंदर लाके कह देगा मस्जिद हराम के पास लड़ना, किधर से आप फिट करोगे इसको? तो जब कोई आपके सामने ये रखे उसको कब पूरी आयत तो पढ़ लो, मस्जिद हराम के पास ना लड़ना, तो ये किसकी बात हो रही है? कुछ सोचो तो सही। यानी अगर वो आपको ड्राइव कर दे इतना आपके साथ लड़े, तुमने नहीं लड़ना, तुमने स्टार्ट नहीं करना, यानी ये कहा जा रहा है हत्ता युकातिलुकुम फी, यहां तक कि वो लड़े तुमसे। अच्छा अब क्या हुआ था, जब आपको याद होगा अगर जिसने सीरत पढ़ी हुई है, कि सुलह हुदैबिया का जो मौका था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उम्रे पे आ रहे थे, जिसमें उन्होंने रोक दिया था, तो हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो इतनी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह इनको इंस्टिगेट करें, किसी तरह इनको भड़काएं, ये कुछ ना कुछ करें। अब ये कुछ करेंगे ना तो फिर हम इनके ऊपर हमला, हम कहेंगे देखा इन्होंने तो ऐसे किया था। क्योंकि जाहिर है एक हुरमत वाली जगह की हुरमत है, वहां पर वो भी उनके अंदर भी थोड़ा इतना था कि हम नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा कत्लो गारत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तुम लड़ो उनसे मस्जिद हराम के पास, तुम्हें अलाउड नहीं है, ये हरम है। लेकिन अगर वो तुम्हें मारे तो अब ये नहीं आपको बैठ जाओ आए हम क्या करें, ये तो जगह की तकद्दुस है, हम तो नहीं ना यहाँ पे लड़ सकते, तो इनको मारने दो हमें, और आप उनको मारने दे, नहीं फिर तुम भी वापिस मारोगे। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कौन है दुनिया में ये कहेगा कि हाँ हम लेट जाते हैं आओ हमें मारते जाओ, हम इतने अच्छे लोग हैं लेकिन हमने नहीं कुछ करना, कौन ऐसे करेगा? आप मुल्कों को देख लें, खुद दुनिया में मिसालें हैं, कोई एक मुल्क दूसरे के ऊपर इस तरह की कोई करता है तो दूसरा मुल्क इतने बदला लेता है या नहीं लेता? जब उसके अंदर इतनी अगर ताकत होती है तो लेता है ना। हाँ वो बेचारा खुद बिल्कुल मरा हुआ हो तो फिर नहीं लेगा, लेकिन जिस मुल्क में ताकत हो लेता है ना बदला। तो फिर मुसलमानों को बुरा करने की क्या बात है कि वो क्यों कहा गया उनके कुरान के अंदर, कहा जा रहा है भाई जब तुम्हें निकालोगे तुम भी इनको निकालो, वो तुम्हें मारेंगे तो तुम भी मारो लो उनको। हालांकि पिछले 13 साल मक्की जिंदगी के कोई आयत बता दें कि जिसके अंदर कहा गया हो कि आपने भी मारना, या जिसमें मुसलमानों ने मारा हो, वो सबर के दिन थे ना। और अब जब मुसलमानों के पास ताकत आ गई है, इतने कम से कम स्टेब्लिश हो गए, उनसे तो कम ही थे ताकत में लेकिन फिर भी इतने स्टेब्लिश हो चुके हैं, तो अब कहा गया नहीं तुम अब ऐसे नहीं कि मार खाते रहो। और कसूर किया इनका, ठीक है या तो वो कोई कसूर हो सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं। आज हर चीज की फ्रीडम की बात होती है, विमेन लिब की बात है, ये इस चीज की फ्रीडम हमें चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ये है, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होनी चाहिए कि जिसका जी जो जी चाहे वो उस रिलीजन को अपनाए, क्या ये नहीं होनी चाहिए? कोई भी इंसाफ वाला इंसान कहेगा कि होनी चाहिए, चाहे कोई मुसलमान नहीं भी है वो भी ये कहेगा। तो यही तो कहा जा रहा है ये फितना नहीं बर्पा करना, इतना अशद्दु मिनल कत्ल है। फइन कातलूकुम फक्तलूहुम, फिर अगर वो लड़े तुमसे तो वो कत्ल करें तुमको तो तुम भी उनको कत्ल करो, कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, पहल नहीं करनी लेकिन जंग का आगाज हो जाए तो फिर यही जजाए काफिरों की, अगर वो इनिशिएट करते हैं तो फिर तुम भी लड़ोगे। जो ना खुद दीन पे चलते हैं काफिर हैं, दूसरों को भी नहीं चलने देते तो फिर उनके साथ तो यही होगा ना। फइनतहाउ फइनल्लाह गफूर रहीम, ये देखें आप ये भी आयतें कभी पढ़ लिया करें ना, पिछली आयत को तो लेके बहुत मुसलमानों के सामने उछाला जाता है कि देखो जी इनके ये, तो ये अगली आयत क्या कह रही है, फइनतहाउ फिर अगर वो बाज आ जाए, कौन वो दुश्मन जो है तुम्हारा, जो तुम्हारे तुम्हें घरों से निकालने वाला है, फिर जो तुम्हारे पर ये जुल्म करने वाला है, फिर जो तुम्हारे से लड़ने के लिए आए, फिर भी अगर वो जंग से बाज आ जाए, इस फितना को क्रिएट करने से बाज आ जाएं, फइनल्लाह गफूर रहीम, तो फिर ये नहीं होगा कि अब तुम उनको मारो इसलिए कि पहले तो इन्होंने ऐसा किया था ना, मुझे तो वो नहीं भूलता जब इसने ये किया था, नहीं अब उसने सरेंडर कर दिया, अब वो कहता है कि मैं नहीं सताऊंगा, अब वो जुल्म और उसको छोड़ देता है, तशद्दुद को छोड़ देता है, तो अल्लाह गफूर रहीम। और आप देखें अबू सुफियान को, अबू सुफियान ने जब फतह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल कर लिया, कोई पिछली उनको बात नहीं दोहराई गई कि आप तो उहद में आए थे और पूरा लश्कर लेके, और आपने तो हमें इतना नुकसान पहुंचाया था, आप तो थ्रू आउट मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे यहां से बैठे हुए,
हम आपको कैसे माफ कर दें? नहीं, फाइनेंताओ फिर वो बाज आ जाए, फाइन अल्लाह गफूर। ये देखें इस्लाम की अजमत आप देखें इसमें, ये होता है बड़ापन। फिर ये नहीं हुआ तो तुमने ये किया था, पर वो वाला वक्त याद करो जब तुम ऐसे करते थे, हमें तो नहीं भूला ना, तुम भूल गए हो। नहीं, इसको एक छोटे कॉन्टेक्स्ट में भी देखें आप, छोटे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह रख के कि एक दिन आप पावरफुल होती हैं। पहले आपने बड़ी मारें खाई, बड़ी बातें सुनी, बड़ी वो की, एक दिन आप पावरफुल हो जाती हैं, एक दिन आपके हाथ में घर की हुकूमत मसलन आ जाती है और कोई आपके सामने नीचे हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या है, अब पुरानी चीजों को लाके ना किया जाए, अब क्या है, अब छोड़ दो, अब माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करने वाला है। ठीक है, तो इसी को घर की टेरिटरी में भी रख के आप देख लें।